Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashta Prayesu Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Ruttama Sloke श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 1 सॉरी स्कंद 10 भाग 1 अध्याय 3 अध्याय का शीर्षक है कृष्ण जन्म श्लोक क्रमांक 30 शब्दों का परिचय उपसंहार विश्वात्मन अद रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म क्रिया युष्ठम चतुः भुजम उपसंहार विश्वात्मनदो उपसंहार विश्वात्मनदो उपसंहार विस्मात विश्वात्मन अदरूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म क्रियाजुष्टम चतुर्भुजम उपसंहार विस्मात्मन अदरूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म क्रियाजुष्टम चतुर्भुजम उपसंहार विश्वात्मन अदौ रूपम अलौकिकम शंख चक्र गदा पद्म क्रियाजुष्टम चतुर्भुजम उपसंहार विश्वात्मन अदरूपम अलौकिकम शंखचक्र गदा पद्म क्रियाजुष्टम चतुर्भुजम उपसंहार विश्वात्मन शब्दार्थ उपसंहार वापस ले जाइए। विश्वात्मना हे विश्वव्यापी भगवान, अदह उस रूपम रूप को अलौकिकम इस जगत में अप्राकृतिक शंख चक्र गदा तथा कमल से युक्त क्रिया इन ऐश्वर्यों से युक्त इष्टम अलंकृत चतुर्भुजम चार हाथों वाले। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा की मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विदान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी भगवान हैं और आपका यह चतुर्भुज रूप जिसमें आप शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं इस जगत के लिए अप्राकृत हैं। कृपया इस रूप को समेट लीजिए और सामान्य मानवीय बालक बन जाइए जिससे मैं आपको कहीं छिपाने का प्रयास कर सकूं। तात्पर्य, देवकी भगवान को छिपाने के सोच रही थी। वे अन्य बालकों की तरह इन्हें कंस के हाथों सौंपना नहीं चाह रही थी। यद्यपि वासुदेव ने वचन दिया था कि वे कंस को हर बालक को दे दिया करेंगे, किंतु इस बार वे अपना वचन भंग करके बालक को कहीं छुपा देना चाहते थे, किंतु इस अद्भुत चतुर्भुज के कारण उन्हें छिपा सकना असंभव हो रहा था। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपामयं ददान्ति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानुजं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखानुजं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चात्यचेतकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरवसुते नमः। सङ्कर्षणकारणसहायी गर्भोदसायी च पयोदिशायी शेषस्तेजस्यां सहस्रकलशनित्यानन्दाशिररामं प्रणमामि। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विद्वान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ओम निराकर निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। अभी भागवतम के 10वें स्कंध से हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, मगर जैसे से आधा गिरधारी रोटी दे साइमल्टेनियसली दोनों जन्म हुए थे। कौन? ये देवकी के लड़के हैं जिसके बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, मगर उधर यशोदा के घर से भी वो जन्म हुए थे साथ में अपने बहन को ले बहन को लेकर। ये यशोदा नंदन है, देवकी के लड़के हैं, वसुदेव के पुत्र। तो भगवान की जन्म कथा को हम अभी श्रवण कर रहे हैं। भगवान कंस के कारागृह में माता देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद सबसे पहले वसुदेव जी देख के आश्चर्य हो जाते हैं, ओहो, सोचने लगते हैं वसुदेव जी, अरे स्वयं भगवान है और हमारे बेटे के रूप में आ गए, ऐसे करके आश्चर्य हो जाते हैं। क्योंकि देवकी के सामने जो भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान कृष्ण, वो द्विभुज वाले नहीं थे, शंख चक्र गदा और पद्म को हाथ में लिए हुए, पीताम्बर पहने हुए, कौस्तुभ मणि शोभायमान, कर्णों में मकराकृति कुंडल, श्याम वर्ण के एकदम दीप्तियमान शरीर के साथ, जो ऐश्वर्यपूर्ण वैकुंठ का नारायण या विष्णु का उस रूप में माता देवकी के सामने प्रकट हुए थे। इस रूप को देख के वसुदेव जी घबरा गए, आश्चर्य होने लगे। ये स्वाभाविक था आश्चर्य होना, क्योंकि कितने उनके पहले कुछ छह लड़के ऐसे ही जन्म हुए हैं और एक एक को लेके वसुदेव जी को कंस को दे दिया करते थे वसुदेव जी, और अचानक सातवां लड़का गायब हो गया और ये आठवां लड़का आया तो आया चार भुजा वाला, चार चार हाथ है, को मालूम था कि स्वयं भगवान है। तो आश्चर्य मतलब इसलिए कि वो भगवान कैसे हमारे घर में हमारे बच्चे के रूप में आ गए, इस प्रकार से आश्चर्य हो रहे थे। ठीक है, भगवान आए तो आए, मगर देखो कि वो कारागार के अंदर भी आ गए, है ना, जेल के अंदर। हम लोग जेल में कई और रहते हैं, तपस्या कर रहे हैं, दर्शन देने के लिए आए हैं, ठीक एक प्रकार का स्वाभाविकता दिखाई पड़ता है, मगर जेल के अंदर भी आ गए और आश्चर्य, अरे अभी आ गए अभी क्या होगा, कंस को पता लगेगा। इस प्रकार से कई सारे आश्चर्य की बातें पता लग रहा था। किसी का गाड़ी रास्ते में नहीं ना, वो गाड़ी वाला आया उठा के ले लेगा, किसी का चार चक्का उठा रहा है, अपना नहीं ना, किसी भक्त का टोशन वाला। तो इस प्रकार से वसुदेव जी आश्चर्य हो रहे थे। फिर बाद में वो स्तुतियां करने लगे भगवान को, फिर वसुदेव जी की स्तुतियों के बाद माता देवकी ने स्तुतियां करने लगा, बहुत सारे प्रार्थनाएं करने लगे। लगभग माता देवकी का प्रार्थनाएं खत्म होने वाला है। कल कल जो 30 नंबर 31 नंबर श्लोक में माता देवकी की प्रार्थनाएं खत्म हो जाएंगे, फिर 32 नंबर श्लोक से भगवान बोलना चालू करते हैं चतुर्भुज वाले विष्णु स्वरूप। तो बहुत प्रकार के स्तुतियों को करने के बाद माता आज अपने पुत्र को निवेदन करती है कि आप वापस ले जाइए, वापस ले जाइए, ये जो आपका जो स्वरूप हमारे सामने प्रकट है, जिस स्वरूप के साथ हमारे सामने आप प्रकट हुए हैं, जो शंख चक्र और गदा पद्म का, इस स्वरूप को आप वापस ले जाइए। वापस लेके एक जो प्राकृतिक इस जगत के लिए है कि नहीं, ये जो स्वरूप आप अभी हमारे सामने दर्शन दे रहे हैं हमको चार हाथ वाले, ये प्राकृतिक नहीं है इस संसार के लिए, है कि नहीं, ये अलौकिक है, अप्राकृतिक है इस जगत के लिए। हालांकि यही रूप भगवान का प्राकृतिक रूप है कि नहीं, ये उनका स्वयं रूप है, मगर यहाँ देवकी कहती है कि इस जगत के लिए अलौकिक है, ये प्राकृतिक नहीं है। यहाँ पे क्या दो दो हाथ वाले सब घूम रहे, आप चार हाथ वाले, चार हाथ लेके आ जाएंगे तो नहीं चलेगा, है कि नहीं, सब फिर यहाँ पे वैसे कंस का डर है, कंस का भय है, क्योंकि कंस तो हमारा ऑलरेडी 6 लड़कों को मार चुका है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हालांकि वसुदेव जी ने वचन दे रखे हैं कि मैं मेरे सारे संतानों को आपके पास जमा कर दूंगा, है कि नहीं, फिर आप मार डालो। और वसुदेव जी अगर एक बार कोई वचन दे रहे हैं तो वो उससे कभी उबरते नहीं है, है कि नहीं, पीछे नहीं होते, उनका नाम है संसार में सभी। इवन कंस जैसा दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति भी वसुदेव जी के ऊपर ट्रस्ट कर रहा था, विश्वास कर रहा था कि वसुदेव बोला मतलब लाके देगा। और हालांकि उन्होंने दिए भी, 6 लड़कों को लेके कंस के सामने सौंप दिए, मगर इसके मामले में, ये 8वें लड़के के मामले में उनका वो जो वचन वो भी वो पीछे छोड़ना चाहते थे, है कि नहीं। और पति के वचनों को वो हमेशा पत्नी को सपोर्ट करना चाहिए, पति के कार्यों में उनको, अर्धांगिनी को उनको हेल्प करना चाहिए। उसी प्रकार से अपने जितने भी बच्चों को लेकर कंस को सौंप दिया करते थे, देवकी माता कुछ नहीं कहती थी, मगर इस बार देवकी माता चाहती है कि मैं इसको छुपा दूं कहीं, है कि नहीं, इस बच्चे नहीं दूंगा। हर एक पुत्र संतान के प्रति माँ का तो उसी प्रकार का स्नेह और प्रेम रहेगा ही, मगर क्योंकि अभी स्वयं भगवान वहां पर आए हैं इसीलिए देवकी माता का इस प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है। तो माता कहती है कि देखिए कि हे विश्वासमन, ये भगवान सारे विश्व की आत्मा स्वरूप, आप सब जगह उपस्थित हैं संसार में, मेरे हृदय में भी उपस्थित है आप, तो कृपा करके आपका ये 4 हाथ वाला रूप को आप वापस ले लो। क्यों वापस ले लो? क्योंकि आप वापस लेंगे तभी हम आपको छुपा पाएंगे कहीं पे। एक्चुअली मूल श्लोक में ये बात नहीं व्यक्त किया गया कि वो केवल इतना कहती है कि उपसंहार मतलब वापस ले लो, विश्वात्मा नहीं विश्व के आत्मा, आदो रूपम अलौकिक, ये आपका जो रूप है ये अलौकिक है, अप्राकृतिक है, जो 4 हाथ वाले आप दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि संसार में सब 2-2 हाथ वाले हैं कि नहीं, ये अप्राकृतिक अलौकिक रूप है, तो इसको आप वापस ले लो, खाली इतना श्लोक में। मगर आचार्य श्रील प्रभुपाद इसको व्यक्त करते हैं कि माँ का जो ये भाव है कि आपका इस प्रकार का जो स्वरूप को वापस लेने के लिए जो कह रहे हैं, उसके पीछे भाव ये कि बस आप इस 4 भुजा को छुपा के 2 भुज बन जाएंगे तो हमारे जैसा, तो हम आसानी से किधर भी किसी के घर में भी छोड़ सकते हैं आपको, है कि नहीं। और वही होगा ना आगे जाके, फिर वो 2 भुजा वाले बनेंगे और वो बोलेंगे मुझे उधर लेके छोड़ दो, उधर है कि नदी के उस बाजू। तो इसलिए माँ माता वहां पे उनको निवेदन करती है कि आप कृपया, उनकी प्रार्थना में कि आप कृपया इस चतुर्भुज वाले स्वरूप को समेट लीजिए, वापस ले लीजिए, ले लीजिए। ये जो उपसंहार ये शब्द है ना, इससे थोड़ा सा विचार करने योग्य है। वापस ले लो है कि नहीं, इसका अर्थ ये समझ में आ रहा है कि ये मूल रूप नहीं है कृष्ण का, जो भी चतुर्भुज वाले दिखाई पड़ रहे हैं, मूल रूप द्विभुज वाले हैं, है कि नहीं। नहीं तो माता क्या कहती, नहीं आप अपना स्वरूप को बदल दीजिए ना, द्विभुज वाले बन जाइए। मगर वो बोल रही है कि इसको वापस ले लो आप, ये जो दिखाई पड़ रहा है। आप वहां याद करेंगे ना भगवत गीता में 11वें अध्याय में विश्व रूप के समय पे है ना, तो उस समय अर्जुन जब विश्व रूप का दर्शन करते हैं, 11वें अध्याय में विश्व रूप का दर्शन करने के बाद परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, फिर बाद में सभी प्रकार के श्लोकों को फिर उनका गुणगान करते, फिर बोलते हैं ओहो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, एकदम से भय उत्पन्न हो रहा है आपका इस स्वरूप को देखकर, प्लीज प्लीज आप फिर से कृपया आप चतुर्भुज वाले बनिए ना, मैं उस चतुर्भुज का स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो जैसे सौम्य और सुंदर चतुर्भुज का स्वरूप भगवान दिखाए और उसके तुरंत बाद अपने मूल स्वरूप में वापस आ गए, प्रभुपाद वहां पे भी तात्पर्य में लिखते हैं कि यहाँ पे पता लगता है कि ये जो विश्व रूप है और साथ साथ में जो 4 भुजा वाले हैं, ये भगवान का मूल नहीं है, मूल रूप नहीं है, द्विभुज वाले ही मूल रूप है। इसलिए माता यहाँ पे ये नहीं कह रही है कि आप द्विभुज वाले बन जाइए में छुपा हुआ, ये कह रहे कि आपका ये चतुर्भुज को वापस लीजिए आप। हाँ, वापस लेना मतलब दिया हुआ, मतलब दिखाया हुआ है कि नहीं, उसको वापस करना कहते हैं कि नहीं। पहले नहीं रहेगा तो दिखाओ करके कहेंगे, मगर पहले वो अभी दिखाए इसलिए उसको बोल रहे वापस लेके आप मूल रूप में आ जाइए। ये उपसंहार शब्द को इस प्रकार से समझने के लिए प्रयास कर सकते हैं। और संपूर्ण विश्व में क्योंकि विष्णु सर्वत्र वसती, सभी जगहों पे जो निवास करते हैं उनको विष्णु कहते हैं, तो यहाँ पे जो चतुर्भुज का स्वरूप है वो विष्णु का स्वरूप है। उस दृष्टिकोण से वो विश्वात्मन शब्द को व्यवहार करते हैं, माता देव की विश्वात्मन। तो यहाँ पे माता देवकी का जो वात्सल्य भाव वो प्रकट हो रहा है। आप जानते रहेंगे संसार में जितने भी रिलेशनशिप है, संबंध है, वो बहुत सारे कैटेगरीज है संबंधों का, मगर इन सारे संबंधों को अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, विभागीकृत करेंगे, ये पांच विभागों में हम इसको समेट ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, जितने भी संबंध है संसार में। और उसी पांच प्रकार के संबंधों के साथ ही भक्त भगवान के साथ संबंध को जोड़ता है। और कई सारे और संबंध है जिन सारे संबंध इन मुख्य पांच संबंधों को बढ़ावा देते हैं, या ये मुख्य पांच संबंधों को और अच्छी तरीके से आस्वादन करने के लिए वो बढ़ावा देते हैं। और बाकी जितने भी संबंध है, इन संबंधों को शास्त्रिक यानी वैदिक भाषा में रस कहते हैं, रस है कि नहीं। हम सब सुने रहेंगे पांच प्रकार के रसों से भगवान के साथ का संबंध होता है। तो ये पांच प्रकार के संबंध क्या है, या पांच प्रकार के रस क्या है? प्रारंभ में शांत, शांत के बाद दास्य रस, दास्य रस के बाद साख्य, सख्य, फिर उसके बाद वात्सल्य, और अंत में माधुर्य, कंजुगल। तो ये पांच प्रकार के जो संबंध है ये मुख्य संबंध माने जाते हैं, केवल श्री कृष्ण के साथ ही नहीं, इस संसार में हर एक व्यक्ति या एक दूसरे के साथ का जो संबंध है वो पांच संबंधों के अंदर ही पाए जाते हैं। और उसके अलावा भी कई सारे और संबंध है, वीर्य इत्यादि, इन सारे संबंध या इन सारे रस मुख्य पांच रसों को बढ़ावा देने वाला है और उसको और अच्छी तरीके से आस्वादन करने के लिए। तो ये रस शब्द क्यों व्यवहार किया गया है रिलेशंस के लिए, क्योंकि रस मतलब क्या है? रस मतलब जैसे आम रस, आम और आम रस में क्या अंतर है, क्या अंतर हो सकता है आम और आम रस में? आम को मतलब रस को देखने से आपको स्वाद मिलता है, तो आम को जीभ में लगाने से स्वाद नहीं मिलता है। आम और आम रस में एक साधारण अंतर है कि संपूर्ण आम का आस्वादन नहीं कर सकते, मगर संपूर्ण रस का आस्वादन, क्योंकि आम में छिलके मिलेंगे और गुठली मिलेगा, है ना, और गुठली और छिलके का हम लोग आस्वादन नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, है कि नहीं, उसको त्याग देते हैं। मगर आम रस में संपूर्ण रस का हम लोग आस्वादन करते हैं, ना, रस, रस में तो उसको इंग्लिश में एसेंस कहते हैं, सार, सार, रस मतलब सार, आम का सार, एसेंस, एसेंस ऑफ द फ्रूट, ना, उसको रस कहते हैं। तो रस में किसी भी प्रकार का तेज्य वस्तु नहीं होता है, तेज्य मतलब त्याग करने जैसा वस्तु रस में नहीं होता है, वो रस कहते हैं। तो इन जो रस के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं या थोड़ा समझेंगे, ये जीवन का रस, ये जीवन और रस, रस को मतलब आम रस को पीने से आस्वादन या आनंद प्राप्त होता है, जो एंजॉयमेंट। तो जीवन में उस प्रकार का आनंद कब मिलता है, जब हम किसी ना किसी व्यक्ति के साथ किसी ना किसी संबंध में संबंधित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उससे हमको जो आनंद मिलता है उसको रस कहा जाता है। जस्ट एक उदाहरण के लिए, माँ अपने बच्चे को लाड़ प्यार करती है, उसको सेवा करती है और उसका देखभाल करती है, उसको फीडिंग खिलाती है, उसको नहलाती है, हालांकि उसमें मेहनत है ज्यादा, फिर भी बच्चे की सेवा करने से एक प्रकार का आनंद मिलता है माँ को, वो जो फीलिंग्स है, जो आनंद जिसको हम अनुभव करते हैं उसको रस कहा जाता है ना, उसको रस कहा जाता है। और मालूम है छोटे छोटे बच्चे हैं, जब भी वो बस चलना चालू करते हैं या बोलना सोचली बोली से बोलना चालू करते हैं, उस समय उनके जो पेरेंट्स हैं माता पिता उन शब्दों को और उस थोड़ा सा चलने की गति को वो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और बहुत देर तक उनकी बोली को सुनने के लिए और चलने का देखने के लिए इतना गौर से देखते हैं। कभी कभी आम आदमी या हम लोग ऐसे सोचते हैं क्या उसको पीछे बच्चे के पीछे पड़े हुए सुनने, नहीं, उसको सुनने से उन सुतली बोली को जिसमें कोई मीनिंग नहीं रहता है, मीनिंगलेस शब्द है, फिर भी उससे एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन आनंद मिलता है, वो आनंद या वो सेटिस्फेक्शन उसका रस कहा जाता है ना। ये किससे प्राप्त होता है, रिलेशन है कि नहीं, उस रिलेशन के द्वारा कुछ ना कुछ सर्विस उसकी सेवा करते उससे ये आनंद हमको मिलता है। तो ये पांच प्रकार के होते हैं, जैसे कि शांत, दास्य, सत्य, वात्सल्य और माधुर्य। और इस पांच प्रकार के संबंधों से हम श्री भगवान के साथ भी हमारा संबंध को जोड़ते हैं, या भक्त लोग उनके संबंध भगवान के साथ जोड़ते हैं। तो इसमें से एक संबंध है भगवान के साथ का, उसको वात्सल्य रस कहते हैं, वात्सल्य संबंध। ये सारे संबंध भौतिक स्तर पे भी है, आध्यात्मिक स्तर पे भी है। भले ही भौतिक स्तर पे इन सारे संबंध हमको आनंद प्रदान करने जैसा लगते हैं, मगर उससे हमको आनंद नहीं मिलता है, अल्टीमेटली हमको दुख ही मिलता है। आप हर एक रस को भौतिक स्तर पे सोच के, मतलब विचार करके सोच सकते हैं। शांत भाव में हमारा कई सेवा हम भी करते हैं और हमारा सेवा भी कुछ लोग करते हैं। शांत भाव में क्या, शांत भाव में हमारा सेवा कौन करता है यार, हम किसकी शांत भाव में सेवा करते हैं, ऐसे कई सारे संबंध है अपने साथ। हम उनके साथ बात नहीं करेंगे, उनको बात नहीं करते हैं, कुछ एक्टिव रिलेशन नहीं होता है, फिर भी हम उनकी सेवा करते हैं या उनको आनंद प्रदान करते हैं। या ऐसे कुछ वस्तु होते हैं, या ऐसे व्यक्ति, या ऐसे पशु या पक्षी, वो हमारे साथ शांत संबंध में संबंधित होते हैं। एक एकदम निम्न से निम्न उदाहरण को अगर हम विचार करें, चप्पल हम लोग पहनते हैं है कि नहीं, वो हमारा सेवा कर रहा है कि नहीं, चप्पल हमसे बात कर रहा है, हमसे खेल रहा है, नहीं, किसी भी प्रकार का एक्टिव रिलेशन नहीं है, मगर चप्पल हमारे सेवा में रहता है ना। तो चप्पल शांत भाव से हमारा सेवा करता है। इवन श्री भगवान के पादुका भी, वो वहां पे सबसे दिव्य जगत में वो सब एक एक व्यक्ति है, भगवान की पादुका भी, वो भी भगवान की सेवा में शांत भाव में है कि नहीं, बांसुरी है ना, मोर पंख है, और वृंदावन के वृक्ष इत्यादि, मोर इत्यादि, वो सब शांत भाव में सेवा करते हैं। तो यहाँ एक चप्पल मान लीजिए, उसका उदाहरण लेंगे, तो चप्पल हमारे सेवा करती है, तो उस चप्पल का हम पहनने से वो सेवा तो करेगी। सबसे पहला नया चप्पल पहनने मात्र से हमको क्या मिलता है, क्या करता है, काटता है ना। नया चप्पल जैसे ही खरीद के हम लोग पहनते हैं, शू बाइट कहते हैं ना कुछ उसको, सबसे पहला वो हमको तकलीफ देता है। ये भौतिक धरातल पर संबंधों का परिणाम है, ये भौतिक धरातल पर संबंधों का परिणाम है। सत्य फ्रेंडशिप का भी सोचिए, इसके इसका उदाहरण सबको मालूम रहता है, कैसे दोस्त होते हैं, किस किसके आधार पर वो लोग हमारा फ्रेंड बनते हैं, उसके लिए एकदम से ठोस उदाहरण देने की जरूरत नहीं। जब तक हमारे पास सुविधाएं हैं या हम उनको सेंस प्रदान कर रहे हैं तब तक वो हमारा फ्रेंड के रूप में प्रतिपादित है या दिखावा करे हैं। और दास्य भी देखेंगे, मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप, उसमें भी देखेंगे भौतिक जगत में जो सर्वेंट मास्टर की सेवा करके मास्टर को प्रसन्न करना चाहिए, वो सर्वेंट हमेशा कैसे मास्टर को ठग लूं, मालिक को ठग लूं, उसके ऊपर उसका दिमाग हमेशा चलता रहेगा। और मास्टर भी ऐसा ही है, मास्टर यानी जो मालिक, वो हमेशा दिमाग लगाता है कि कैसे मैं जो वर्कर को शोषण करूं, है ना, ज्यादा काम लेके कम पैसा दूं, और काम करने वाला हमेशा सोचता है कि मैं ज्यादा पैसा ले लूं और काम से काम ठग लूं। ये पूरा भौतिक संसार है ना, देयर इज नो परफेक्ट रिलेशनशिप, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप में नहीं है। मगर वहां पे देखिए आध्यात्मिक जगत में शाक्य बस शाक्य रस में भी देखेंगे फ्रेंड्स में, हाँ ऐसा नहीं कि कृष्ण उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं या संजय दे रहे हैं इसीलिए वो लोग कृष्ण के फ्रेंड्स है। हर समय उनके अंदर एक ही चीज रहता है कि भले ही श्री कृष्ण के फ्रेंड्स है मगर वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही उनका खेल कूद प्लानिंग सब कुछ होता है। और मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप में भी आप देखेंगे जितने भी श्री कृष्ण के सर्वेंट्स है उन लोगों का मूल उद्देश्य क्या है, ये न कहना प्रकार है ना श्री कृष्ण को कैसे हम सेवा करेंगे, यही उद्देश्य है कि सेंटर में कृष्ण है, यहाँ पे सेंटर में है खुद की एंजॉयमेंट। तो घर में नौकरानी या नौकर रखते हैं ताकि हमारा सेवा करने के लिए, हमको हेल्प करने के लिए, मगर वो जैसे ही घर में आता है तो हमारा तनाव बढ़ जाता है, हेडेक बढ़ जाता है, वो घर से जाने तक हम उसको ऊपर नजर रखते हैं, है कि नहीं, ताकि वो कुछ चुरा ना ले और अच्छे से पोछा कोना छोड़ देगी, पोछा ठीक से नहीं करेगी, कुछ ना कुछ हम ध्यान रखेंगे क्योंकि परफेक्ट सर्वेंट कोई नहीं है। ठीक वैसे वात्सल्य में भी आप देख सकते हैं, हालांकि श्रील प्रभुपाद जी ने शुद्ध कृष्ण प्रेम के लिए कभी कभी माता और पुत्र की या माता संतान की उदाहरण को अपने ग्रंथों में और तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण की प्रेम एनालॉयड कैसे होना चाहिए कि जैसे माँ निस्वार्थ भाव से अपने संतान की सेवा करती है। मगर धीरे धीरे से ये आधुनिकता और मॉडर्न कल्चर और एजुकेशन की प्रभाव के वजह से ये जो प्रेम का संबंध है वो भी एकदम से नष्ट हो चुका है। इवन आप भारत में तो दिखाई पड़ रहा है मगर विदेश में एकदम से साफ इसका बहुत ही ज्यादा है। वो पूरा समाज कैसे है किसी भी प्रकार के रिलेशन को मायने नहीं रखता है, चाहे माता पुत्र हो या पिता हो किसी भी प्रकार के। और अगर उसके वात्सल्य को भी देखेंगे आगे जाके पुत्र भी उसी प्रकार से माता के साथ ट्रीट करता है, संतान संतान के साथ, और सेवा करते समय भी अभी आशा उनका रहता ही आगे जाके जैसे ही पुत्र बड़ा होगा हमारा भरण पोषण करेगा, और वो जैसे ही अगर वो ध्यान नहीं देगा तो कंप्लेन करना चालू करते हैं पेरेंट्स। इस प्रकार से इस भौतिक संबंधों में हमको केवल दुख ही दुख मिलता है, मगर वही रिलेशन वही संबंध उसी प्रकार का संबंध अगर हम श्री भगवान के साथ अगर रखते हैं तो उसमें आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादन हर एक स्टेप में हर एक पद में हम लोगों को केवल आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इस श्लोक में माता देवकी का वात्सल्य प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो पता लग रहा है। मगर ये वात्सल्य भी दो प्रकार के हैं, ये वात्सल्य कृष्ण के प्रति का जो पेरेंटल रिलेशनशिप है ये कैसे पैदा होता है, कभी कभी भक्त वो भी भगवान का भक्त होते हैं ऊंचे कोटि के प्रेम के स्तर पे भाव के स्तर पे, मगर ये भक्त वयोवृद्ध होने के कारण कभी कभी कृष्ण को या भगवान को अपने संतान के रूप में उनको स्नेह या प्रेम करने लगते हैं उनको, और बुजुर्ग और कृष्ण को अपने संतान के रूप में प्रेम करने के वजह से उनके अंदर भगवान भले ही भगवान है मगर उनकी सुरक्षा के बारे में वो लोग सोचते हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। जैसे आप देखिए पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए माता पिता के लिए वो छोटा ही रहता है, कई वो मिलिट्रेंट में होने के बाद भी कभी कभी वो आर्मी में रहता है, बड़ा कार्य करता है, फिर भी वो घर में आता है फिर से कभी जाता है माता उसको कैसे गाइड करती है, वहां मत जाना, वहां मत खाना, इस प्रकार के कार्य मत करना, इन सारे चीजें रहता है गाइड करने का जो प्रवृत्ति है, क्योंकि ये संबंध ही ऐसा है कि पुत्र भले ही कितना भी ताकतवर हो जाए कितना भी बड़ा हो जाए फिर भी वो माता पिता के लिए वो संतान ही रहेगा, छोटा ही जैसा उसको लगेगा, उनको उसी प्रकार से प्रेम करते हैं। ठीक वैसे यहाँ पे भी हम देखते हैं प्रकट ही चार भुजा वाले हुए हैं, है कि नहीं, प्रकट बच्चे के जैसा नहीं होते, चार भुजे वाले प्रकट हुए हैं, है कि नहीं, मुकुट धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, कौस्तु मणि गले में, तो इस प्रकार का ऐश्वर्यपूर्ण रूप से प्रकट होने के बावजूद भी देवकी माता उनको क्या रिक्वेस्ट कर रही है कि आप द्विभुजा वाले मतलब नॉर्मल स्टेट में अगर आ जाएंगे तो हम आपको छुपा सकते हैं। किससे छुपा लेंगे? कंस से, अर्थात कंस ये चतुर्भुज वाले विष्णु को कोई हानि पहुंचा देगा उस डर के कारण वो सोच रहे हैं कि हम छुपा लेंगे। तो यहां पे माता देवकी का तो वात्सल्य भाव है
मगर साथ साथ में भगवान के ये जो ऐश्वर्य का ज्ञान भी है उनको, क्योंकि इस श्लोक में देखेंगे वो विश्वात्मन इत्यादि शब्दों के द्वारा भगवान के ऐश्वर्य को व्यक्त कर रही है माता देव की, मगर उसी इसी वात्सल्य प्रेम का या वात्सल्य संबंध का जो व्रज में जो वात्सल्य है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा ध्यान में लाएंगे तो हम देखेंगे यशोदा मैया कितनी बार भगवान प्रयास नहीं किए अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए यशोदा माँ को, आ करके दिखाया मुंह में तो उसने अंदर संपूर्ण जगत को दिखाया है कि नहीं, 7 दिन तक पर्वत उठा के दिखाया, इतने सारे असुरों को मार के दिखाया है कि नहीं, इतने सारे ऐश्वर्य बार बार, जन्म होते ही 6 दिन में ही अपना होठों का ताकत दिखाया, 1 महीने में अपना पैरों का ताकत दिखाया, उसके बाद अपना हाथों का ताकत दिखाया त्रिनावर्त को मार के, है कि नहीं। इस प्रकार से इतने सारे ऐश्वर्य दिखाने के बावजूद भी यशोदा मैया क्या कहती है, नंद बाबा और मैं भगवान विष्णु का उपासना किए थे ना, इसीलिए भगवान विष्णु ने मेरे बेटे को पूतना से बचा लिया। सारे ब्रजवासी भगवान की प्रार्थना, भगवान को प्रार्थना करते हैं और इतने सारे वेदों का पाठ किया जाता है इसलिए मेरे लड़का सकड़ासुर से बच गया। सब लोग सोचते हैं कि मेरा लड़का 7 दिनों तक पर्वत को उठा के पकड़ा, मगर वो कैसे पकड़ सकता है, वो मेरा ही लड़का है ना, मैं उसको जानता हूँ कितना नाजुक है कितना कोमल है। हाँ, उसका पिताजी नंद बाबा और बाकी ग्वाले उस पर्वत को उठा के पकड़ा था 7 दिनों तक। ये माँ का भाव है, ये यशोदा मैया बार बार श्री भगवान प्रयास करते हैं कि अपना ऐश्वर्य को दिखाने के लिए, मगर यशोदा मैया के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है। जब वो विश्वरूप को देखती है वो बोलती है कि मेरा मती मारी गई है, पता नहीं भूत सवार हुआ है कि मैं क्या क्या सब देख रही हूँ, ये मेरा भैम है, ये तो मेरा नॉर्मल लड़का है, मेरा छोटा बच्चा है कृष्ण, इसके मुख के अंदर ये सब कैसे देख सकते हैं, नहीं नहीं मेरे अंदर कुछ त्रुटि है, मेरे नहीं तो कुछ भूत लगा हुआ है मेरे बच्चे को जो मुझे डराने के लिए सब इस प्रकार की भावना है। मगर यहाँ पे जैसा देवकी माता का भाव कैसा है कि वो जानती है भगवान के ऐसा आविर्वात्मन है कि नहीं, फिर भी मेरे बेटे हैं। तो ये पुत्र का जो सुरक्षा का जो भाव है वो प्रकट होता है, मगर साथ साथ में उनका ऐश्वर्य के भाव के साथ। तो ब्रज के भाव और यहाँ के भाव में यही अंतर है, ब्रज में वो वात्सल्य है मगर वो प्योर वात्सल्य, एकदम शुद्ध वात्सल्य है, उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है, है ना। ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान से अनावृत, वहां पे ज्ञान से अनावृत मतलब वो यशोदा मैया ग्वालिन और नंद बाबा ये सब ब्रज के गांव के लोग हैं इसलिए मूर्ख हैं, ऐसा नहीं है। भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए भगवान की माया शक्ति ने जो अंतरंगा माया है उनकी इस जो ऐश्वर्य ज्ञान इत्यादि को वो बंद करके रखा, ये भाव। और उस ज्ञान अगर उदित होता है, ऐश्वर्य का ज्ञान अगर उदित होता है तो ये जो वात्सल्य प्रेम है उसमें बाधा देता है, वो वात्सल्य प्रेम को असर तो कम कर देगा, पता लगेगा कि ये भगवान है तो उसको सुरक्षा की क्या आवश्यकता है, इस प्रकार का भाव आके कमजोर कर देगा वात्सल्य भाव को, इसीलिए वहां पे इस ज्ञान का प्रकट नहीं होता है, वो एकदम से संपूर्ण इसी भाव में रहते हैं कि हाँ ये केवल हमारा लड़का है, नंद बाबा यशोदा मैया का नॉर्म एक साधारण लड़का है हमारे जैसा, ये कोई भगवान भगवान नहीं है, ये ब्रज की भाव है। मगर मथुरा द्वारका का भाव क्या है कि ऐश्वर्य वो भगवान है साथ साथ में मेरे बच्चे हैं, इसे मुझे सुरक्षा का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, इसलिए आप कृपया आपका ये चतुर्भुज का समेट लीजिए, वापस ले लीजिए और नॉर्मल सेट में आ जाइए, ये भाव है। श्री भगवान ब्रज में जो रहते हैं वो उनका स्वयं रूप है, भगवान का स्वयं रूप कैसा है, जो गोलोक वृंदावन में नित्य निवास करते हैं उनका ग्वाल बाल का स्वरूप, वो एकदम से धोती पैर तक नहीं पहनेंगे, भले ही पिता मरे मगर गमछा जैसा कमर में बांधे हुए रहेंगे, 2 हाथ रहेगा श्याम वर्ण के, पगड़ी पहने हुए रहेंगे और उसमें मोरपंख और कमर में बांसुरी, इस प्रकार का जो दिव्य ग्वाल वाल का गांव के बच्चे का स्वरूप है ये उनका स्वयं रूप है। उसके बाद वो अपने आप को बलराम के रूप में विस्तार करते हैं और बलराम से बाकी सारे ऐश्वर्यपूर्ण रूपों का विस्तार होता है, जिसको वैभव प्रकाश कहा जाता है। तो यहाँ पे देवकी के जो लड़के हैं, देवकी का जो लड़का जो मथुरा में है और आगे जाके द्वारका में जाएगा, ये भगवान कृष्ण की वैभव प्रकाश कहा जाता है इनको, वैभव प्रकाश। और ये वैभव प्रकाश में, ये मथुरा और द्वारका में, या देवकी के लड़के कृष्ण, ये कभी कभी द्विभुजा वाले रहते हैं और कभी कभी चार भुजा वाले भी रहते हैं। ये उदाहरण है, यहाँ पे चार भुजा वाले हैं, वो देवकी के ही लड़के हैं, फिर बाद में वो द्विभुजा वाले बन जाएंगे। तो ये इनको भगवान मूल जो भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन या यशोदा नंदन कृष्ण के ये वैभव प्रकाश रूप है, इसमें कभी चार भुजा वाले रहते हैं और कभी द्विभुजा वाले रहते हैं। यहाँ पे भले ही वात्सल्य प्रेम है वसुदेव का, बलि जी का और देवकी माता का, ये इस प्रकार का रूप है। ये दोनों मथुरा और द्वारका और वृंदावन, ये तीन जगहों पे भगवान द्विभुज में रहते हैं, मगर मथुरा और द्वारका में कभी कभी चार भुजा वाले भी बनते हैं वो, तो इसको वैभव प्रकाश भी कहा गया है भगवान के इस रूप को। तो इस प्रकार से इसमें एक बात ये पता लगता है कि माता देवकी का वात्सल्य भगवान के प्रति यहाँ प्रकट होता है। हालांकि भगवान का इस प्रकार की दिव्य सुंदर चतुर्भुज की ऐश्वर्यपूर्ण रूप को वो दर्शन कर रही है, फिर भी वात्सल्य के कारण मेरे ही पुत्र है, इसीलिए वो कहती है कि आप इसका इस रूप को वापस ले लीजिए, अलौकिक रूप को, और ताकि मैं आपको आसानी से छुपा सकता हूँ। और उस वात्सल्य में ऐश्वर्य मिश्रित है, ये बात जो है ना यहाँ पे इस श्लोक में प्रकट होता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदी।